क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मानवीय संबंधों में उतार चढ़ाव पाए जाते हैं? मित्रता कई बार बहुत ही आनंददायक होती है और कई बार नहीं भी होती। कई बार विसुरक्षित होती हैं, कई बार नहीं होती। पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा के दूत थे, और दूत होने के इस कार्य को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि भविष्यवक्ताओं ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि इसराइल और परमेश्वर के बीच के संबंधों में भी उतार चढ़ाव रहे थे। हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है वाचाओं के प्रभाव। इस अध्याय में हम तीन भिन्न भिन्न विषयों को देखेंगे। पहला, हम वाचा के आदर्शों को देखेंगे, और दूसरा, हम वाचाई दंड को जांचेंगे। जब लोग परमेश्वर के ईश्वरीय दंड के अधीन आए तो भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की ओर से किस प्रकार कार्य किया, और फिर तीसरा, हम वाचा के आशीषों की ओर देखेंगे। परमेश्वर ने जो आशीषें अपने लोगों के लिए रखी थीं, भविष्यवक्ताओं ने उनके बारे में कैसे बात की। वाचाई जीवन के इन प्रभावों को समझना हमें पुराने नियम की भविष्यवाणी को समझने में और इसे कलीसिया और संसार के वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार लागू करना है, इसे समझने में भी सहायता करेगा। क्या आपने कभी किसी विवाह में जाकर उन अद्भुत बातों को सुना है जो दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से कहते हैं? क्या यह सुनना अजीब नहीं होगा कि जब दुल्हा और दुल्हन अपने विवाह का आरंभ उन प्रतिज्ञाओं के साथ करें जो आदर्श नहीं है? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं जब दुल्हा दुल्हन से कहे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, परंतु यह निभाना तब मुश्किल हो जाएगा जब तुम बीमार हो जाओगी? या आप किसी दुल्हन को दूल्हे से यह कहते हुए कल्पना कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूं, परंतु तुम कभी हमें गरीब मत बना देना। हम यह सोचेंगे कि इस जोड़े में क्या गड़बड़ी थी जिन्होंने अपने विवाह के दिन एक दूसरे से इस प्रकार कहा, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि विवाह आदर्शों पर केंद्रित हो। यह एक ताजा संबंध है। यह एक ऐसा समय है जब बातें सब वैसी ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए था। हम सब आशा करते हैं कि यह जोड़ा उस समय आपस में कई बातों को याद रखे जब संबंध आदर्श था। पुराने नियम के भविष्यवक्ता जानते थे कि परमेश्वर और लोगों के बीच संबंध कुछ ऐसा ही था। वे समझ गए थे कि परमेश्वर और इसराइल के बीच वाचाई संबंध में कुछ आदर्श पाए जाते थे। अब इस आदर्श संबंध को समझने के लिए हमें दो विषयों को देखना होगा। पहला, आदर्श वाचा की आधारभूत संरचना है, और फिर दूसरा, भविष्यवाणीय सेवाएं, या फिर कि भविष्यवक्ता इन संरचनाओं पर किस प्रकार निर्भर थे। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि पुराना नियम इसराइल के साथ यहोवा की वाचाओं का वर्णन इस प्रकार करता है, जैसे कि वे प्राचीन मध्य पूर्व की सुजरेन वासल संधियों के प्रारूप के समान हों। पुराने नियम के समयों में महान सम्राट छोटे देशों के साथ संधियां या वाचाएं करते थे, और बाइबल कहती है कि यहोवा ने इसराइल राष्ट्र के साथ ऐसी ही वाचा बांधी। जब सम्राटों ने पहली बार अपने वासल राष्ट्रों के साथ संधियां की, तो उन्होंने कुछ ऐसे आदर्शों की घोषणा करने के साथ आरंभ किया जिन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए आधारभूत संरचनाओं की रचना की। सुजरेन वासल संधियों में कम से कम दो तत्व हमेशा प्रकट होते हैं। पहली बात यह है, प्राचीन मध्य पूर्वी संधियों ने सदैव अपने वासल राष्ट्रों की ओर सम्राट की भलाई या उपकार की ही पुष्टि की। उन्होंने महान राजा के नाम की घोषणा की और एक ऐतिहासिक वर्णन को शुरू किया जिन्होंने लोगों के प्रति राजा द्वारा किए महान कार्यों का बखान किया। संधियां सदैव सम्राट की दया पर ही निर्भर थीं, और सम्राट की ओर से दया का यह विषय वाचा के बाइबल के आदर्श के साथ भी मिलता है। बाइबल में प्रत्येक ईश्वरीय वाचा का केंद्र अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की दया थी। वाचाओं के आदर्श में एक और तत्व है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और वह है मानवीय जिम्मेदारी का तत्व। प्राचीन जगत में जिस प्रकार सुजरेन वासल संधि में सम्राट के अधीन राष्ट्रों से वफादारी की मांग की जाती थी, उसी प्रकार पुराने नियम की प्रत्येक वाचा में परमेश्वर के लोगों से वफादारी की मांग की जाती थी। अब हमें हमेशा याद रखना है कि वफादारी की प्रतिक्रिया दैवीय दया की प्रतिक्रिया थी। लोगों ने परमेश्वर के समक्ष अपने ओहदे को अपने कार्यों के द्वारा नहीं पाया था। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के आधार पर वाचाओं को स्थापित किया था, परंतु बिना किसी अपवाद के वाचाओं के आदर्शों में मानवीय जिम्मेदारी सदैव सम्मिलित होती है, जो कि परमेश्वर के समक्ष वफादारी के साथ रहने की अपेक्षा है। इस बिंदु पर हमें यह सोचना चाहिए कि ये प्रत्येक आदर्श तत्व पुराने नियम की वाचा में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले अध्यायों में देखा है, पुराने नियम के भविष्यवक्ता समझ गए थे कि परमेश्वर ने वाचा के 5 संबंधों को स्थापित किया था। उसने आदम और नूह के माध्यम से संसार के सारे राष्ट्रों के साथ वाचा स्थापित की, और फिर उसने अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ वाचा बांधी, और इसके साथ साथ बंधुआई के बाद के दिनों में भविष्य की नई वाचा भी स्थापित की। आदम के साथ वाचा के बारे में एक क्षण सोचें। आदम के दिनों में परमेश्वर के उपकार उसमें प्रकट होते थे जिसमें उसने मानव जाति के लिए संसार की रचना की थी। उसने एक ऐसी सृष्टि ली जो रहने के अयोग्य और अस्त व्यस्त थी, और उसे एक अद्भुत वाटिका का आकार दिया जिसमें मानव जाति को रहना था। जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 1:2 में पढ़ते हैं, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के लिए एक स्वर्ग लोक बनाया, और उस स्वर्ग लोक में आदम और हव्वा को रख दिया। यह दया ही वह आधार थी जिस पर परमेश्वर ने हमारे सबसे पहले पूर्वजों आदम और हव्वा के साथ वाचा बांधी थी। इसके साथ साथ आदम के साथ वाचाई आदर्श में मानवीय जिम्मेदारी की भी आवश्यकता थी। परमेश्वर ने आदम को अदन के अद्भुत वाटिका में रखा, परंतु उसने तत्काल ही गंभीर नियम लागू कर दिए। उत्पत्ति अध्याय 2:16-17 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। स्वर्ग लोक में भी वाचाई आदर्श में केवल परमेश्वर की भलाई ही सम्मिलित नहीं थी, परंतु इसके साथ साथ मनुष्य जाति की जिम्मेदारी भी शामिल थी। यही बात नूह के साथ की गई वाचा में भी सही थी। एक ओर तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को विश्वव्यापी जल प्रलय से बचाया, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 6:7-8 में लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वाचा उस ईश्वरीय अनुग्रह पर निर्भर थी जो किसी योग्यता से नहीं मिलती। फिर भी जो वाचा परमेश्वर ने नूह के साथ स्थापित की वह मानवीय जिम्मेदारी के साथ ईश्वरीय उपकार और दया को जोड़ती है। जब नूह जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर निकला तो परमेश्वर ने कुछ विशेष नियमों की रचना की। उत्पत्ति अध्याय 9 पद 7 में परमेश्वर ने नूह को उसकी आधारभूत मानवीय जिम्मेदारी के बारे में स्मरण करवाया, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। ईश्वरीय अनुग्रह और मानवीय जिम्मेदारी नूह की वाचा में प्रकट होते हैं। आइए अब हम उन विशेष वाचाओं की ओर मुड़ें जो परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र के साथ स्थापित की थीं। आप स्मरण करेंगे कि इसराइल के साथ पहली वाचा पूर्वज अब्राहम के माध्यम से थी। इस वाचा में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस परिवार को पृथ्वी के सभी परिवारों से अधिक आशीष देने के लिए चुना। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 12 पद 2-3 में उससे ये शब्द कहे, तो परमेश्वर ने अब्राहम को असीम अनुग्रह प्रदान किया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक बार फिर वाचाई आदर्श में ईश्वरीय अनुग्रह केंद्रीय तत्व है। फिर भी मानवीय जिम्मेदारी भी अब्राहम की वाचा के आदर्श का अभिन्न अंग थी। पूर्वज अब्राहम की जिम्मेदारी कई अवसरों पर सामने आती है। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति अध्याय 17 पद 1-2 में परमेश्वर ये शब्द कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब्राहम की वाचा में मानवीय जिम्मेदारी सम्मिलित थी। जब मूसा के साथ परमेश्वर की वाचा की बात आती है तो आज अनेक मसीही उसे भ्रांतिपूर्ण तरीके से सोचते हैं। वे मानते हैं कि यह वाचा कार्यों पर केंद्रित थी, परंतु ऐसा नहीं था। और हम यह बात इस सत्य में पाते हैं कि 10 आज्ञाएं एक ऐसी ऐतिहासिक प्रस्तावना के साथ आरंभ होती हैं जो प्राचीन मध्य पूर्वी सुजेरियन संधियों की प्रस्तावनाओं से काफी मिलती जुलती थीं। कोई भी वाचा मिलने से पहले निर्गमन अध्याय 20 पद 2 में हम ये वचन पढ़ते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर ने अपने लोगों से अपेक्षा की थी कि वे उसकी आज्ञा माने, परंतु यह उस दया के कार्य के आधार पर हो जिसमें उसने उन्हें मिस्र की भूमि से बाहर निकाला था। निसंदेह मानवीय जिम्मेदारी का दूसरा पहलू भी मूसा की वाचा में प्रकट होता है। निर्गमन अध्याय 19 पद 5 इसराइल से इन वचनों को कहता है, मूसा के साथ की गई वाचा के आदर्श में ईश्वर के अनुग्रह को मानवीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया गया था। अब दाऊद के साथ की गई राजकीय वाचा भी ईश्वरीय उपकार पर केंद्रित थी। दूसरा शमूएल अध्याय 7 पद 8 में परमेश्वर ने दाऊद से इस प्रकार बात की, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर ने दाऊद के परिवार को अपने लोगों के ऊपर स्थायी शासक के रूप में चुना, और यह उसने प्रेम के कारण किया, न कि दाऊद की किसी योग्यता के कारण। दाऊद का राज्य इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके प्रति दयालु था। इसके साथ साथ परमेश्वर ने मानवीय विश्वास योग्यता की मांग के साथ दाऊद को दिए गए अनुग्रह को भी जोड़ा। सुनिए किस प्रकार भजन 89 पद 30-32 में विश्वास योग्यता की अपेक्षाओं को रखा गया है। यदि उसके अर्थात दाऊद वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना मानें, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परमेश्वर ने दाऊद के संतानों से उसके अनुग्रह के बदले में उसके प्रति विश्वास योग्य रहने की अपेक्षा की। वाचाई आदर्श के दोनों पहलू, नई वाचा जो भविष्य वक्ताओं ने कहा था कि मसीहा के द्वारा आएगी, में भी प्रकट होते हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे संक्षेप में इफिसियों अध्याय 2:8-10 में रखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मसीह में वाचा का आधार अनुग्रह है। परंतु अब उन शब्दों को सुनिए जो 10 में आते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। नई वाचा के आदर्श में भले कार्यों की मानवीय जिम्मेदारी भी शामिल थी। इस बिंदु पर हमें हमारे दूसरे विषय की ओर मुड़ना चाहिए, भविष्यवक्ता इन वाचाई संरचनाओं पर किस प्रकार निर्भर थे। एक ओर भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों को उस करुणा की याद दिलाई जो यहोवा ने उन पर की थी, इसके साथ साथ पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने वाचा में मानवीय जिम्मेदारी पर बहुत अधिक ध्यान दिया। उन्हें परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था कि वे लोगों के पास जाएं और वफादारी पूर्ण सेवा की मांग को स्मरण कराएं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि भविष्यवक्ता जानते थे कि इसराइल के दृष्टिगोचर समुदाय में विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों थे, और इसी कारणवश उन्होंने वाचा में मानवीय जिम्मेदारी को जांचने वाले या प्रमाणित करने वाले आधार के रूप में देखा। वाचा के नियमों के प्रति लोगों के प्रत्युत्तर ने उनके हृदयों के सच्चे चरित्र को प्रकट किया। एक ओर तो दृष्टिगोचर समुदाय के भीतर के अविश्वासियों ने दर्शाया कि उनके पास उद्धार देने वाला विश्वास नहीं है, क्योंकि वे अपनी वाचाई जिम्मेदारियों से दूर हो गए हैं। वे उद्धार के लिए यहोवा पर भरोसा रखने में असफल हो गए हैं, और उन्होंने उसके वफादार बने रहने से इनकार कर दिया है। वाचा का उल्लंघन करने वाले ये कुख्यात लोग परमेश्वर के दंड को सहेंगे। दूसरी ओर मानवीय जिम्मेदारी की परख ने उनको भी पहचान लिया जो सच्चाई के साथ अदृश्य वाचाई समुदाय के भाग थे। अब ये वे लोग थे जो अनंत रूप से छुटकारा पाए हुए थे। उन्होंने यहोवा में उद्धार देने वाले विश्वास को क्रियान्वित किया था, और वे अनंत जीवन के मार्ग में थे। परंतु सच्चाई यह है कि कई बार इन लोगों को भी भविष्यवक्ताओं ने अपने विश्वास को प्रमाणित करने की चुनौती दी थी, लगभग वैसे ही जैसे नया नियम देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7 के शब्दों को सुने, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। इस प्रकार का विषय कि हमें इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए और कि हमारे अंदर उद्धार प्रदान करने का विश्वास है, ऐसा विश्वास है जो भविष्यवक्ताओं की सब पुस्तकों में पाया जाता है। अब हमें इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि हम यह ना सोचें कि भविष्यवक्ता केवल इसलिए नियमवादी थे क्योंकि उन्होंने मानवीय जिम्मेदारी पर बल दिया था, परंतु वास्तविकता यह है कि भविष्यवक्ता समझ गए थे कि परमेश्वर का अनुग्रह आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के हर कार्य के पीछे था। पवित्र शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा से हम यह जानते हैं कि जब कभी भी लोग प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं, तो यह इसलिए होता है क्योंकि प्रभु का आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। इसके साथ साथ बाइबल प्रायः हमें आज्ञा मानने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। और क्योंकि भविष्यवक्ता जानते थे कि परमेश्वर का अनुग्रह आज्ञाकारिता के हर कार्य के पीछे था, वे कभी परमेश्वर के लोगों को आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता की बुलाहट देने से नहीं हिचकिचाए। वाचक के प्रभावों की हमारी जांच में अब तक हमने वाचाई आदर्श के दो पहलुओं को देखा है। इस बिंदु पर हमें हमारे दूसरे विषय वाचाई दंड पर ध्यान देना चाहिए। वाचाई जीवन के वे प्रभाव कौन से थे जब परमेश्वर के लोग प्रभु की सेवा से दूर हो गए थे? पूरे संसार में मानवीय प्रशासन के अनेक प्रारूप हैं, परंतु हर मानवीय प्रशासन में एक बात अवश्य पाई जाती है। वे सब इस बात को मानते हैं कि उनके देश के लोग उनके सारे नियमों को नहीं मानेंगे, और फलस्वरूप वे अपराध और सजा की प्रणाली को स्थापित करते हैं। इसी प्रकार की बात इसराइल के साथ परमेश्वर की वाचा में भी पाई जाती थी। वह जानता था कि उसके लोग पापी हैं, वह जानता था कि वे उसके विरुद्ध बलवा करेंगे, और इसलिए उसने अपने लोगों पर दंड की प्रणाली को स्थापित किया। दंड की इस प्रणाली में भविष्यवक्ताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे वाचा के संदेशवाहक थे, उन्होंने अपराधों को दर्शाया और उन्होंने दंड की चेतावनी भी दी जो परमेश्वर उन्हें तब देगा जब लोग उसकी वाचा का उल्लंघन करेंगे। अब यह समझने के लिए कि भविष्यवक्ताओं ने दंड के संदेशवाहकों के रूप में किस प्रकार कार्य किया, हमें वाचाई दंड के उन दो तत्वों को समझना जरूरी होगा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर रखे थे। पहला, हम दंड के उन प्रकारों को खोजेंगे जिनकी घोषणा भविष्यवक्ताओं ने की थी, और दूसरा, हम उस प्रक्रिया को जांचेंगे जो इन दंड के कार्यों में प्रयोग की जाएगी। आइए पहले हम दंड के प्रकारों पर ध्यान दें जिनकी चेतावनी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने उन्हें दी जिन्होंने यहोवा के साथ अपनी वाचा का जानबूझकर उल्लंघन किया। यह अनुभव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने दंड के उन प्रकारों का आविष्कार नहीं किया था जिनकी चेतावनी उन्होंने दी थी। इसके विपरीत परमेश्वर के लोगों को जैसे दंड की अपेक्षा करनी चाहिए उसकी सूची के लिए उन्होंने पुराने नियम के वचनों को देखा। भविष्यवक्ताओं की शब्दावली दर्शाती है कि वे प्रायः उन अनुच्छेदों पर निर्भर रहे जो मूसा की पुस्तकों में पाए जाते हैं। ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जिन्होंने भविष्यवक्ताओं की अगुवाई की कि वे दंड के उन प्रकारों की सूची बनाएं जो परमेश्वर के लोगों को दिए जा सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पद 25 से 28, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 15 से 68, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 पद 16 से 29, और व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 15 से 43, और अंत में लैव व्यवस्था अध्याय 26 पद 14 से 39 ने भविष्यवक्ताओं को वह सब जानकारी प्रदान की जब उन्होंने दंड के उन प्रकारों को समझने का प्रयास किया जो परमेश्वर अपने लोगों को देगा। इन अनुच्छेदों में इतनी सामग्री है कि उन्हें सारगर्भित करके समझना कठिन है कि वे क्या कह रहे हैं, परंतु यह कहना सुरक्षित है कि मूसा ने यह अनुच्छेद राष्ट्र को आश्वस्त करने के लिए लिखे कि वाचाई दंड की 2 आधारभूत श्रेणियां थीं। वाचाई दंड का पहला प्रकार है कि परमेश्वर निरंतर रूप से किए जाने वाले पाप का प्रत्युत्तर प्रकृति में दंड के साथ देगा। परमेश्वर प्राकृतिक जगत में अपने आशीषों को हटाने की चेतावनी देता है ताकि यह संसार परमेश्वर के लोगों के लिए प्रतिकूल हो जाए। आपको याद होगा कि परमेश्वर इसराइल को ऐसी भूमि में लेकर आया था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थीं। प्रतिज्ञा की भूमि की प्राकृतिक दशा परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनने वाली थी। परंतु भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब इसराइल विद्रोह करेगा तो परमेश्वर इस आशीष को दंड में बदल देगा। अब किस प्रकार के प्राकृतिक दंड दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के विरुद्ध आएंगे? व्यवस्था विवरण अध्याय 4, 28, 29 और 32 एवं इसके साथ साथ लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध प्राकृतिक दंड के कम से कम 6 बड़े प्रकारों की सूची प्रदान करते हैं। पहला, मूसा की पुस्तकों के ये अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर किसी समय इसराइल की भूमि पर सूखा भेजेगा। यह सूखा भूमि को सूखा देगा जिससे लोग बहुत अधिक कष्ट झेलेंगे और वहां महामारी फैलेगी। अकाल भी आएंगे जिससे लोगों के पास भोजन भी नहीं होगा। यह तब होगा जब वे जानबूझकर प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और बीमारियां उनके ऊपर आएंगी। वे ज्वर और फोड़े और गांठों और अन्य बीमारियों को सहेंगे। जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे और लोगों की संख्या कम हो जाएगी। प्रतिज्ञा की भूमि में संतानहीनता और असामयिक मृत्यु जानवरों और मनुष्यों की संख्या को कम कर देंगी। भविष्यवक्ताओं ने बार बार इन प्रकारों के वाचाई दंड का उल्लेख किया। उन्होंने प्रायः चेतावनी दी कि परमेश्वर प्रतिज्ञा की भूमि में जीवन को असमंजस में डालने के लिए कुछ प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएगा। उदाहरण के लिए सुनिए कि परमेश्वर ने हग्गय अध्याय 1 पद 9 से 11 में क्या कहा। मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। परमेश्वर ने प्रायः अपने भविष्यवक्ताओं से घोषणा करवाई कि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दंड आने वाला है। प्रकृति में दंड के अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने युद्ध में दंड की घोषणा भी की थी। युद्ध प्रायः प्राकृतिक खतरों को लेकर आता है जैसे अकाल और बीमारी, परंतु परमेश्वर ने वाचाई दंड के एक प्रकार के रूप में अपने लोगों के विरुद्ध मानवीय शत्रुओं को भेजने की बात भी कही थी। मूसा के लेखनों में युद्ध के कई उल्लेख पाए जाते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 4, 28, 29 और 32 एवं लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 में हम युद्ध में दंड की कम से कम 5 बड़ी श्रेणियां पाते हैं। पहली, परमेश्वर के लोग पराजय का सामना करेंगे। वे अपने शत्रुओं के हमलों के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। दूसरी, उनके नगरों को घेरा जाएगा। नगर उनके शत्रुओं द्वारा घेरा जाएगा और उनके निवासी कष्ट सहेंगे। फिर उनके शत्रु उनके नगरों पर कब्जा कर लेंगे। परमेश्वर के लोगों के शत्रु प्रतिज्ञा की भूमि में आ जाएंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। युद्ध में मृत्यु और विनाश एक अन्य वाचाई श्राप है, क्योंकि परमेश्वर के अनेक लोग उनके शत्रुओं के हाथों मारे जाएंगे। और अंत में सबसे बदतर श्राप, परमेश्वर कहता है कि उसके लोगों को बंदी बना लिया जाएगा और बंधुआई में अन्य राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया जाएगा। बार बार भविष्यवक्ताओं ने न केवल यह घोषणा की कि परमेश्वर के लोग उनके शत्रुओं के द्वारा पराजित किए जाएंगे, बल्कि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि प्रतिज्ञा की भूमि से वे बंधुआई में भी ले जाए जाएंगे। उदाहरण के रूप में भविष्यवक्ता मीका ने चिताया था कि यहूदी धर्म को मानने वाले अनेक लोग प्रतिज्ञा की भूमि से बंधुआई में ले जाए जाएंगे। मीका अध्याय 1:16 में हम बंधुआई के इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। दंड और युद्ध की ऐसी चेतावनियां पुराने नियम के सारे भविष्य वक्ताओं में प्रकट होती है। अतः हम देखते हैं कि पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने वाचाई दंड के दो आधारभूत प्रकारों की घोषणा की, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध। आइए अब हम उस प्रक्रिया की ओर देखते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि उसका उपयोग वह अपने लोगों को इस प्रकार के दंड देने में करेगा। भविष्य वक्ताओं ने दंड के किन प्रक्रियाओं की अपेक्षा की थी? भविष्य वक्ताओं ने दंड की प्रक्रिया मुख्य रूप से लैव्य व्यवस्था अध्याय 26:14-39 से सीखी थी। इस अनुच्छेद में मूसा ने दंड का वर्णन इस प्रकार किया था, जैसे कि वह एक लंबे समय तक चलता है और वह एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करता है। जब हम इस अनुच्छेद का आकलन करते हैं तो हम कम से कम 3 सिद्धांतों को पाएंगे जो उस तरीके को संचालित करेगा जिसके अंतर्गत ये दंड आएंगे। परमेश्वर धैर्य दिखाएगा, परंतु दंड की कठोरता और अधिक बढ़ जाएगी, और इस प्रकार के दंड का एक विशेष अंत भी होगा। आइए पहले हम ईश्वरीय धैर्य के बारे में सोचें। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26:14-39 इसे स्पष्ट करती है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति बहुत धैर्य रखता है जब वे पाप करते हैं। परमेश्वर महसूस करता है कि उसके लोग बलवा करेंगे और पश्चाताप ना करते हुए हठी हो जाएंगे। अतः इस अनुच्छेद में मूसा दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति बहुत धैर्यवान रहेगा। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। 14-17, 18-20, 21-22, 23-26 और 27-39। ये सारे खंड परमेश्वर द्वारा यह कहते हुए आरंभ होते हैं, यदि तुम मेरी ना सुनोगे। और फिर वह बताता है कि वह दंड के रूप में इसराइल के साथ क्या करेगा। यदि तुम मेरी ना सुनोगे को फिर से बताना दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप करने के अनेक अवसर देने के द्वारा उनके साथ धैर्य रखने की चाहत रखता है। परमेश्वर के द्वारा धैर्य रखने का एक संक्षिप्त वर्णन पुराने नियम की भविष्यवाणी में प्रकट होता है। योएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के धैर्य के बारे में योएल अध्याय 2 में बात की जब उसने लोगों को पश्चाताप करने की बुलाहट दी। अध्याय 2:13 में उसने इसराइल से ये शब्द कहे, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। भविष्यवक्ता पूरी निष्ठा के साथ वाचाई दंड में विश्वास करते थे, परंतु वे यह भी मानते थे कि यहोवा अपने लोगों के प्रति बहुत धैर्य रखता है। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 में वाचाई दंड का पहला सिद्धांत यह है कि परमेश्वर धैर्य रखेगा, परंतु इसके साथ साथ दूसरा सिद्धांत भी है, परमेश्वर के वाचाई दंड फिर और अधिक गंभीरता के साथ आएंगे। जिस प्रकार लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 5 खंड हमें बताते हैं कि परमेश्वर धैर्यवान है, वे हमें यह भी बताते हैं कि परमेश्वर अपने दंड की गंभीरता को बढ़ा देगा। 18:21-24 और 28 में परमेश्वर इस तरह से अपने लोगों को चेतावनी देता है, अगर वे उसके प्रति बलवा करते रहे तो वह उन पर 7 गुना अधिक दंड लाएगा। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 का यह पहलू हमें बताता है कि वाचाई दंड भिन्न स्तरों में आता है। कई बार भविष्यवक्ताओं ने तुलनात्मक रूप से छोटे दंड की चेतावनी दी और फिर बाद में उन्होंने किसी बड़े दंड के आने की चेतावनी भी दी। उदाहरण के तौर पर हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 38 पद 1 में एक छोटे दंड के बारे में पढ़ते हैं। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा मर ही जाएगा। अब मुझे निश्चय है कि हिजकिया ने स्वयं यह सोचा होगा कि यह उसके लिए एक बड़ा वाचाई दंड था, परंतु पूरे राष्ट्र के संदर्भ में यह छोटा था। यहां केवल एक व्यक्ति परमेश्वर के दंड को सहन कर रहा था, परंतु दूसरी ओर जब हिजकिया ने असीरिया के हमलों से चमत्कारिक रूप से छुटकारा पाने के बाद भी स्वयं को यहोवा के प्रति समर्पित करने से इनकार कर दिया, तो यशायाह ने और अधिक गंभीर दंड की घोषणा की। उसने घोषणा की कि एक दिन बेबीलोन के लोग पूरे यहूदा राष्ट्र पर कब्जा कर लेंगे। यशायाह अध्याय 39 पद 6 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा, कोई वस्तु ना बचेगी। यह कथन हिजकिया के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में दी गई चेतावनी से कहीं अधिक गंभीर था। यह पूरे राष्ट्र के लिए खतरा था और अनेक भविष्यवक्ता इसी प्रकार के प्रारूप का अनुकरण करते थे। वे बढ़े हुए दंड के बारे में बात करते थे। न केवल हम पाते हैं कि परमेश्वर धैर्य और बढ़ी हुई गंभीरता के साथ वाचाई दंड लाता था, बल्कि हम एक तीसरा सिद्धांत भी पाते हैं। दंड का अंत प्रतिज्ञा की भूमि से बंधुआई में चले जाना है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 पद 27 से 39 का अंतिम खंड सचेत करता है कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आने वाला सबसे गंभीर दंड उनकी भूमि का विनाश और प्रतिज्ञा की भूमि से बंधुआई में जाना होगा। देखिए किस प्रकार मूसा इसे लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 पद 33 में रखता है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। पुराने नियम के विश्वासियों के मन में इससे किसी और बुरी स्थिति की कल्पना करना कठिन था। परमेश्वर इसराइल को प्रतिज्ञा की भूमि पर लेकर आया था, एक ऐसी भूमि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थीं, और अब भविष्य वक्ता यह कह रहे थे कि इस भूमि से उन्हें बंधुआई में लेकर जाया जाएगा। जब तक हम बाइबल के अधिकांश भविष्यवक्ताओं की ओर आते हैं, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बार बार चेतावनी दे दी थी कि वह उन्हें उनकी भूमि से बाहर भेजने वाला है। अतः हम भविष्यवक्ताओं को यह घोषणा करते हुए पाते हैं कि बंधुआई शीघ्र ही आने वाली है। उदाहरण के तौर पर आमोस अध्याय 5 पद 26 और 27 में हम इन शब्दों को पाते हैं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरणपीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे, इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। यद्यपि मूसा ने बंधुआई के खतरे को लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 और अनेक अन्य अनुच्छेदों में बहुत ही स्पष्ट कर दिया था, फिर भी इसराइल के लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन लगा। यह धारणा बहुत प्रचलित थी कि परमेश्वर कभी पूरी तरह से अपने लोगों को नहीं निकालेगा, कम से कम यरूशलेम तो ज्यों का त्यों रहेगा। लोग यह भूल चुके थे कि यहोवा के साथ उनकी वाचा में मानवीय जिम्मेदारी भी निहित थी, और इसी कारण यरूशलेम की सुरक्षा के अंतिम वर्षों में भी यिर्मयाह को यह घोषणा करनी पड़ी कि नगर और मंदिर का विनाश होने वाला है। यिर्मयाह अध्याय 7 पद 13 से 15 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करते रहा हूं तो अभी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले, इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलोह की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अनुग्रहकारी, धैर्यवान और दयालु है। उसे क्रोधित करने में बहुत समय लगता है, परंतु उसे क्रोधित किया जा सकता है। अतः हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को दंड देता है, परंतु यह धैर्यपूर्ण और दया से भरा दंड होता है जो वो अपने लोगों पर लाता है। वाचाओं के प्रभावों पर आधारित इस अध्याय में अब तक हमने वाचाई आदर्श और वाचाई दंड देखा है। हमारे विचार विमर्श में आइए अब हम तीसरे घटक को देखें, वाचाई आशीषें। परमेश्वर किस तरह अपनी आशीषें अपने लोगों पर उंडेलता है। क्या कभी आपकी ऐसी मित्रता किसी से रही है जहां दूसरा व्यक्ति आपको कभी छोड़ता नहीं? शायद आप कहीं दूर जगह पर चले गए और पत्र फिर भी आते रहें, चाहे आप उनका जवाब देना भूल गए हों, या फिर जब फोन आते हों और आप इसी मित्र को पाते हों। ऐसे मित्र होना अच्छी बात है जो आपके पूरे जीवन भर आपके साथ रहे। यहोवा और इसराइल के साथ उसके संबंध में यही बात थी। भविष्यवक्ता जानते थे कि परमेश्वर अपने लोगों को कड़ा दंड देगा, परंतु वे यह भी जानते थे और इस बात की घोषणा करते थे कि परमेश्वर अपने वाचाई लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं। वाचाई जीवन के इस पहलू को देखने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने दंड के विषय में किया था। पहले हम वाचाई आशीष के प्रकारों को देखेंगे और फिर हम वाचाई आशीष की प्रक्रिया को देखेंगे। आशीषें लोगों को तब मिलती हैं जब वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का प्रयत्न करते हैं। निसंदेह परमेश्वर अपने लोगों से सिद्ध होने की अपेक्षा नहीं करता, परंतु वह यह अपेक्षा अवश्य करता है कि वे पूरी निष्ठा के साथ उसे खोजें और उसके प्रति बलवा ना करें। जब वाचा के लोग इस प्रकार विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें भरपूरी से आशीष देता है। आशीष की पहली श्रेणी प्रकृति में आशीष है। जिस प्रकार मूसा ने प्रकृति में दंड की बात कही थी, उसी प्रकार उसने उन आशीषों के बारे में बात भी की जो प्रकृति के क्षेत्र में आएंगी। मूसा ने इसराइल के समक्ष प्रकट किया कि परमेश्वर ने प्रकृति से जुड़ी अनेक आशीषें देने का वादा किया था यदि वे विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 4, 28, 30 और लेव व्यवस्था अध्याय 26 में कम से कम चार रूपों में इस प्रकार के उद्देश्य प्रकट होते हैं। पहला, मूसा ने भरपूर कृषि के बारे में बात की थी। यदि लोग प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो खेत फसलों से भरे रहेंगे। वह पशुधन में बढ़ोतरी की बात भी करता है। यदि लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करेंगे तो उनके जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली परमेश्वर के लोगों को मिलेगी। वे अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी शरीर को प्राप्त करेंगे और इसके अतिरिक्त उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसराइलियों की संख्या बढ़ जाएगी जिससे वे प्रतिज्ञा की भूमि में भर जाएंगे। प्रकृति में आशीषों की घोषणाओं से हमें अचंभित नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की थी तो उसने हमें स्वर्गलोक अर्थात अदन की वाटिका में रखा था, परंतु फिर पाप के कारण परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल दिया। जब परमेश्वर के वाचाई लोग उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तो वह उन्हें आशीषें और प्रकृति की आशीषें देने की प्रतिज्ञा देता है ताकि वे उन बातों का अनुभव कर सकें जो परमेश्वर चाहता था कि उनके पास आरंभ से ही हों। पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने कई रूपों में प्राकृतिक संपदा की आशीष के बारे में बात की। योएल अध्याय 2 पद 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। लगभग इसी प्रकार जकरयाह ने अनुमान लगाया कि वे उसके दिनों में परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे जब वे प्रभु की आज्ञा मानेंगे। जकरयाह अध्याय 8 पद 12 ये शब्द कहते हैं, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी। यद्यपि वाचाई आशीषों का पहला प्रकार प्राकृतिक संपदा पर केंद्रित है, एक दूसरे प्रकार की श्रेणी बार बार भविष्यवक्ताओं में प्रकट होती है और यह है युद्ध में आशीष। जिस प्रकार वाचा के लोगों ने उस समय पराजय का अनुभव किया जब वे परमेश्वर के दंड के अधीन थे, उसी प्रकार उन्होंने तब विजय और शांति का अनुभव किया जब वे वाचा के आशीषों में पाए जाते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 28 30 और लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 में यह कम से कम चार प्रकार से प्रकट होता है। पहला, मूसा परमेश्वर के लोगों से कहता है कि वे अपने शत्रुओं को हराएंगे, परंतु इससे भी बढ़कर युद्ध का अंत होगा, दूसरे राष्ट्रों से शत्रुता समाप्त होगी और हर प्रकार के विनाश से राहत मिलेगी और निसंदेह उन सब बंदियों की रिहाई होगी जिन्हें प्रतिज्ञा की भूमि से बाहर ले जाया गया था। पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने प्रायः युद्ध में इस प्रकार की आशीषों के बारे में बात की थी। सुनिए किस प्रकार आमोस ने इसराइल राष्ट्र के लिए सैन्य सफलता के एक अच्छे भविष्य के बारे में बात की थी। आमोस अध्याय 9 पद 11 से 12 में उसने बंधुआई के पश्चात के समय के बारे में इन शब्दों को कहा था, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में लें। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। शत्रुता और मुश्किलों भरे संसार में भविष्यवक्ता आमोस ने घोषणा की कि दाऊद का घराना सारे दुष्ट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। और लगभग उसी प्रकार मीका ने अध्याय 4 पद 3 में घोषणा की थी कि इन विजयों के फलस्वरूप एक बड़ी शांति उत्पन्न होगी। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। अतः हम इन अनुच्छेदों से देख सकते हैं कि भविष्य वक्ताओं ने स्वयं को परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों की ओर बनाए रखा। यद्यपि भविष्य वक्ताओं के पास दंड और पाप के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नकारात्मक था, फिर भी भविष्य वक्ताओं ने यह भी कहा कि पश्चाताप और सच्चाई प्रकृति और युद्ध में महान आशीषों को प्रदान करेगी। जैसा कि हमने उन आशीषों के प्रकारों को देख लिया है जो परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करेगा, अब हमें उन प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए जिनके माध्यम से ये आशीषें आएंगी। जिस प्रकार दंड की एक प्रक्रिया थी, उसी प्रकार आशीष की भी एक प्रक्रिया है। कम से कम तीन ऐसे सिद्धांत हैं जो ईश्वरीय आशीष की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। पहला, आशीषें अनुग्रह के द्वारा आती हैं, और फिर आशीषें अनेक स्तरों में आती हैं, और कि परमेश्वर की आशीषों का एक अंत होता है। प्रायः आधुनिक मसीहियों को यह भ्रम रहता है कि पुराने नियम में लोगों ने अपने उद्धार को या परमेश्वर के समक्ष अपनी धार्मिकता को स्वयं अर्जित किया है, परंतु सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। भविष्य वक्ताओं ने कार्यों के द्वारा लोगों को उद्धार का मार्ग नहीं दिखाया था। उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने और परमेश्वर की दया को खोजने की बुलाहट दी। होशे अध्याय 14 पद 1-2 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, हे इसराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए कि होशे ने यह नहीं कहा था कि उसके पाठकों को कठिन मेहनत करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत, इसराइल के विश्वास योग्य लोग जानते थे कि केवल परमेश्वर से मिलने वाली दया ही आशीषों को लेकर आएगी। उन्होंने मानवीय योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि वाचाई आशीष के आधार पर क्षमा को पाने का प्रयास किया। दूसरा सिद्धांत जो वाचाई आशीषों को संचालित करता है वह यह है कि वे भिन्न भिन्न स्तरों में आती हैं। जिस प्रकार दंड अलग अलग स्तरों में आए, उसी प्रकार हम छोटी और बड़ी आशीषों के बारे में बात कर सकते हैं। पैमाने के निचले स्तर पर पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने परमेश्वर से तुलनात्मक रूप से कम स्तर की दया के बारे में बात की। उदाहरण के तौर पर, जैसे यशायाह ने हिजकिय्याह को बताया कि वह बीमार होने वाला और मरने वाला है, वैसे ही उसने राजा से एक छोटी आशीष की घोषणा भी की थी जब उसने उसे बताया कि परमेश्वर उसे जीवित रहने देगा। यशायाह अध्याय 38 पद 5 में परमेश्वर ने कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। काफी भविष्यवाणियां इन व्यक्तिगत आशीषों पर केंद्रित थीं, परंतु अनेक बार भविष्य वक्ताओं ने अपना ध्यान उन महान राष्ट्रीय आशीषों की ओर भी दिया जो परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करेगा। उदाहरण के तौर पर, 701 ईसा पूर्व में असीरियों ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम के फाटकों तक पहुंच गए थे। यशायाह अध्याय 37 पद 34 और 35 में भविष्य वक्ता ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि परमेश्वर इस बड़ी पराजय से उन्हें कब छुड़ाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी आशीष थी, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खतरे में था और परमेश्वर ने कहा था कि वह उन्हें युद्ध में विजय की आशीष देगा। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की आशीषों के प्रति सचेत रहना चाहिए जिनकी घोषणा परमेश्वर ने अपने वाचाई लोगों से की थी। ईश्वरीय अनुग्रह और आशीषों के स्तरों के अतिरिक्त एक तीसरा सिद्धांत भी है जो वाचाई आशीषों को संचालित करता है, वह है बचे हुए लोगों की पुनर्स्थापना। पुराने नियम के भविष्य वक्ता मानते थे कि चाहे कितना भी बड़ा दंड क्यों ना आ जाए, फिर भी कुछ बचे हुए लोग अवश्य रहेंगे। अब ये बचे हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में भी हो सकते हैं या फिर बहुत ही कम संख्या में भी हो सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। परंतु भविष्य वक्ताओं ने सदैव कहा कि परमेश्वर कुछ विश्वास योग्य लोगों को बचाए रखेगा, और उन्हीं लोगों पर आगे का निर्माण करेगा। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह ने कहा कि यरूशलेम पूरी तरह से नाश किया जाएगा। परंतु यिर्मयाह अध्याय 5 पद 18 में वह लोगों को आश्वस्त करता है कि कुछ लोग बचे रहेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत ना करूंगा। कुछ लोगों का बचे रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बचे हुए लोगों से ही परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सबसे बड़ी आशीष लाने की प्रतिज्ञा की थी। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 से हम पहले ही देख चुके हैं कि वाचा की ओर से सबसे बड़ा श्राप था प्रतिज्ञा की भूमि से निकलकर बंधुआई में चले जाना। परंतु लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 पद 40 से 45 और व्यवस्था विवरण अध्याय 4 एवं अध्याय 30 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कुछ लोगों को बचाए रखेगा, उन बचे हुए लोगों को वापस प्रतिज्ञा की भूमि में लाएगा और पहले से भी अधिक आशीषें देगा। सुनिए किस प्रकार मूसा इस विषय को व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 4 और 5 में रखता है। चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। बचे हुए लोगों की पुनर्स्थापना का यह विषय सभी भविष्यवक्ताओं में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह ने सिखाया था कि बंधुआई के बाद परमेश्वर अपने बचे हुए लोगों को प्रकृति की बड़ी आशीषें देगा। यिर्मयाह अध्याय 23 पद 3 में यिर्मयाह ने परमेश्वर की ओर से ये शब्द कहे, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूलें फलेंगी। लगभग इसी प्रकार बंधुआई के बाद बचे हुए लोग युद्ध में भी एक बड़ी आशीष प्राप्त करेंगे। भविष्यवक्ता योएल ने सिखाया था कि जब परमेश्वर के लोग वापस आएंगे तो ये बचे हुए लोग एक बड़ी विजय और लंबी शांति का अनुभव करेंगे। योएल अध्याय 3 पद 9 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। परंतु फिर अध्याय 3 पद 17 में हम इसराइल की विजय के बारे में पढ़ते हैं, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है, और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। योएल ने युद्ध में एक ऐसी बड़ी विजय के बारे में बात की जो इसराइल को सर्वदा के लिए सुरक्षित बना देगी। पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों के बचे हुओं की पुनर्स्थापना की आशा की थी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि बंधुआई के बड़े दंड के बावजूद बचे हुए लोग पुनर्स्थापना की एक बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हमने यह देखा है कि किस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने वाचाओं के प्रभावों को देखा था, और हमने तीन मुख्य विषय देखे हैं। पहला, ईश्वरीय अनुग्रह और मानवीय जिम्मेदारी के आदर्श, और फिर हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने व्यक्तिगत स्तर से लेकर पूरे राष्ट्र की बंधुआई के स्तर तक दंड की चेतावनी दी थी, और फिर अंत में हमने यह भी देखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को छोटे रूपों में और फिर बचे हुए लोगों के जरिए छुड़ाएगा और बंधुआई के बाद एक बड़ी पुनर्स्थापना करेगा। इन विषयों अर्थात इन प्रभावों ने पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं को वह सब कहने में अगुवाई दी थी जो उन्होंने कहा था। और जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं विषयों से अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए।